असीम आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ लोगों से परिपूर्ण है और भौतिक आकाश से बहुत दूर है, जहाँ संसारी लोगों को सांसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, वहां वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में भला किस तरह सोच सकते हैं। अतएव संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। भविष्य में यदि वे ऐसे यंत्र बना सके जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य हो, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोगों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। अतः भगवान तथा उनका वास स्थान सदा सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा, किंतु भगवान भक्तों के लिए सदैव पार्षद के रूप में बने रहेंगे। आध्यात्मिक आकाश में उनका ऐश्वर्य अपरिमेय है। भगवान समस्त दिव्य वैकुंठ लोकों में अपने अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति की एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तदाकार होने दिया जाता है। उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वैकुंठ लोकों में या परम लोक गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद बन सके, जिसका उल्लेख भगवद गीता में मध्धाम के रूप में हुआ है और इस श्लोक में स्वधाम कहा गया है। भगवद गीता में मध्धाम या स्वधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के स्वधाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, न चांदनी की, न बिजली की। वो धाम यह स्थान सर्वश्रेष्ठ है और जो भी वहां जाता है वो फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन सदा प्रकाशित रहते हैं और भगवान के इस स्वधाम से विकीर्ण किरणें ही ब्रह्म ज्योति का निर्माण करती है। इसकी पुष्टि मुंडक कठ तथा श्वेता शेतर उपनिषद में भी हुई है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासां सर्वमिदं विभाति। भगवान के स्वधाम में प्रकाश के लिए सूर्य चंद्रमा या तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं वहां बिजली की आवश्यकता है, तो फिर दीपकों के विषय में क्या कहा जाए। दूसरी ओर इन लोगों के स्वतः प्रकाशित होने के कारण ही सारा तेज संभव है और वहां जो भी चैतन्यवान है वो सब स्वधाम के परावर्तन के कारण है। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से चमत्कृत हो जाता है वो साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। अतः विश्वोपनिषद 15 ये प्रार्थना की गई है कि भगवान अपने चमत्कृत तेज को हटा ले जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। ये श्लोक इस प्रकार है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्याशापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावर्णो सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फलती फूलती है। आपका भक्ति योग ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत अतः सत्य धर्म है और मैं उस सेवा में लगा हुआ हूँ। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपनी ब्रह्म ज्योति किरणों के इस अवगुंठन को हटा ले जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। ओम अज्ञानतिमिरादर्श ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो शुक्रदेव गोस्वामी की जो प्रार्थनाएं हैं उनको हम श्रवण करते जा रहे हैं रोज। कल भी हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से भूयो नमः सत व्रजन छिदे असतहा, वो कहते पुनः पुनः मैं वो परम भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। तो कल हमने सुना किस प्रकार से एक भक्त के जीवन में प्रणाम प्रार्थना नमस्कार कितना महत्वपूर्ण है। तो जो प्रार्थनाएं हैं शास्त्र कहते हैं कि भक्त के पास, क्योंकि जिसने भी कृष्ण भावना को स्वीकार किया है उसने माया के साथ युद्ध छेड़ दिया है, जानबूझकर क्या कर दिया है, जानबूझकर माया के साथ युद्ध छेड़ दिया है, बैटल अगेंस्ट माया। तो माया, क्योंकि भगवान कहते हैं मम माया दुरतया, मेरी जो माया है वो बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। और माया का मतलब क्या है, जो है नहीं उसको है समझना। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं चीजें स्थान आदि वो मेरा नहीं है, लेकिन मिथ्या भावना के कारण व्यक्ति उसको अपना समझ लेता है या है समझ लेता है, या जो अशाश्वत चीज है उसको शाश्वत समझ लेता है, हाँ वो माया है। प्रभुपाद कहा करते थे कोई रस्सी पड़ी हुई है और उसको हम क्या सोचते हैं, अंधेरे में सांप। तो उसी प्रकार से माया का मतलब ही है कि जो है नहीं उसको हम है समझ लेते हैं, तो वो उससे फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो मेरी माया है ये त्रिविध गुणमयी माये, ये कैसी बनी है, किस चीज से बनी है, तीन गुणों से बनी हुई है ये जो भगवत माया, ये भौतिक जगत आदि है। तो फिर भगवान इस चीज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको लाभना बहुत कठिन है। हाँ तो फिर कैसे संभव है, क्या क्या उपाय क्या है जिसके द्वारा हम पार हो सकते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महान महान भक्त भी ये जो भौतिक भगवान का एनर्जी है, भगवान की तीन शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। तो हम तटस्थ शक्ति में है, बीच में है, तट में स्थित है। जैसे आप मुंबई में नरीमन पॉइंट में जाते हो, जुहू बीच में जाते हो, तो आप बिल्कुल नरीमन पॉइंट में समंदर के किनारे दीवार सा बना है, रास्ता है, तो उसके ऊपर से आप चलते हो, तो उसका मतलब है आप तट में चल रहे हो, बिल्कुल बीच में हो आपकी स्थिति। आप जंप लगा सकते हो सागर में या पृथ्वी में आ सकते हो। तो उसी प्रकार से जो जीव है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, लेकिन बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर वो अपनी जो वास्तविक पहचान है उसको भूल जाता है, और भूलने के कारण वो ये शरीर नहीं है लेकिन अपने आप को शरीर मान बैठता है। मिछे माया रे वैसे खाचे हबो डुबो भाई, मिछे माया रे वैसे, माया के वश में खाचे हबे डुबो भाई, मतलब ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, माया के प्रभाव में इतना उसका स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। व्यक्ति नाना योनि सदा पीरे करदय भक्षण करे, अनेकों योनियों में उसको भ्रमण करना पड़ता है केवल असत चीजों का भोग करने के लिए, असत वस्तुओं आदि का भक्षण करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तो जो जीव यदि इस माया से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि उसने भगवत भजन शुरू किया है तो उसने जानबूझकर माया के साथ युद्ध करने की घोषणा की है, और माया कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया है, लेकिन इसका उपाय क्या है, कैसे ये जो बहिरंगा शक्ति जो दुर्लंघ्य है उससे कैसे निकला जाए, बल्कि माया के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, जानबूझ कर थोड़ा सा खरोचते हैं, चलो कुछ होगा नहीं, मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, भक्तों के संग में हूँ, बैकअप है मेरे पास, अब सपोर्ट है, अपना सपोर्ट सिस्टम आदि है, तो ठीक है थोड़ी देर के लिए आई वांट टू एंजॉय माया। अब माया को मुझे एड नजर आए, बड़ा सा मैं शुरुआत के दिनों में न्यू भक्तों को ट्रेनिंग देता था, कई साल सेवा थी दिल्ली में, तो मदन मोहन प्रभु जो रशिया से हैं, तो उनका बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया था हमारा, तो हमेशा मुझे सिखाते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे उनके लैपटॉप में एक वाटर पानी का एड दिखाया, एक एड आया था, वो हमेशा एड बड़ा पावरफुल है, एक पानी कुछ मुझे फिर से याद आया, तो मैंने वो वीडियो क्लिप अपने पास फिर से रखी, तो बहुत पावरफुल है। दो ऐड दिखाए थे उन्होंने, एक दिखाया था वो स्पेसिफिकली ब्रह्मचारी के लिए था, ब्रह्मचारी क्लास के लिए, तो एक ऐड था जिसमें एक बहुत सुंदर युवती को दिखाया था, और वो ऐड था केवल आधे आधे सेकंड का था, नहीं आधे सेकंड नहीं आधे मिनट का था। उस ऐड में एक सुंदर युवती एक सुंदर माता जी को दिखाया है, उसके बहुत बाल और अच्छे वस्त्र पहने, और वो ऐसे ऐसे कर रही है और आकर्षित कर रही है, तो और आप कुछ 10 सेकंड देखते हो या 15 सेकंड, उसके बाद उसका हर चीज बदलने लगता है, फेस वगैरह और बिल्कुल पूतना से वही भयंकर दिखने लगती है। तो प्रभु जी कहा करते थे कि माया शुरुआत में बहुत टेस्टी लगती है, हाँ, क्योंकि उससे होने वाला प्राप्त होने वाला जो सुख है वो रजोगुणी है। परिणामे विषमेव एतद् अग्रे अमृतोपमे, भगवान कहते हैं रजोगुण का सुख एतद् अग्रे शुरुआत में अमृत से भी अधिक मीठा होता है। वे अमृत तो नहीं खाया लेकिन भौतिक सुख हम अनुभव करते हैं, तो लेकिन परिणाम विषमेव, इसका परिणाम केवल विष में ही होगा, कष्ट में होगा। इसलिए भगवान की भगवत गीता में कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख ये नये एवते अत्यंतवंत कौन्ते य नतेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय स्पर्श आदि से प्राप्त होने वाला जो भौतिक सुख है उसमें रममान नहीं होता। आद्यंतवंत कौन्ते य, इसकी शुरुआत या अंत दोनों भी कष्टकारक है। तो इस प्रकार से माया शुरुआत में बहुत हमें आकर्षक लगती है, और दूसरा ऐड तो बहुत ही अनोखा था, वो मिनरल वाटर का था। तो मिनरल वाटर का वो ऐड में दिखाया था कि एक युवक जंगल में जाता है घोड़े के ऊपर, अपना सारा रस्सी और सब कुछ, जैसे ट्रेकिंग के लिए जाते हैं ना लोग बेसिक सामान लेकर, वो घोड़े के ऊपर दौड़ रहा है पहाड़ों के ऊपर, तो ऐसा दौड़ रहा था, तो उसको अचानक आवाज आती है, एक स्त्री की आवाज आती है चिल्लाती हुई, बचाओ ना समथिंग इंग्लिश ऐड है वो, तो और वो स्त्री तो ये देखते हैं कहां से आवाज आ रही है, रुक जाता है, रुक के थोड़ा सा जहां आवाज आ रहा है उस दिशा में जाता है कि पहाड़ के ऊपर नीचे खाई है, और उस पहाड़ से एक पेड़ से एक शाखा को एक उस युवती ने उसको पकड़ा है, और नीचे हजारों में गहरी खाई है, उसका हाथ छूट जाए तो वो क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है, और वहां वो अटकी हुई है, लटकी हुई है वहां, और वो वहां से चिल्ला रही है प्लीज बचाओ, जोगर जी बोल रही होगी। तो इसने जैसे ही घोड़े में जा रहा था तो आवाज को सुनने मात्र से रुक जाता है, कहां से आवाज आ रही है, तो वो आवाज की ओर जाता है चलते हुए, तो देखता है ओ सुंदर युवती है, और वो उसको बुलाती है, आओ आओ, उसके आकर्षक कपड़े आते थे जो मॉडर्न क्लोथ्स दिखाए हैं, तो उसको बुलाती है कि आता है वो हीरो है तो बचाना चाहता है। हाँ, तो हम भी माया के साथ अपना जो हीरोगिरी जिसको कहते हैं कभी कभी दिखाते हैं, फिर माया हमें क्या करती है, कभी स्वर्ग के उठाए कबो नरक के डुबाए, माया क्या करती है फिर कभी ऊपर उठाती है फिर फिर नीचे पिटाती है। जैसे प्रभुपाद वो उदाहरण दिया करते थे, जब दंड देना होता था किसी गुनेगार को पहले समय में, तो राजा दल उस कैदी को ले जाते थे नाव में, जल के अंदर, पानी के अंदर, सरोवर में, और उसको डुबा देते थे। लंबे समय तक पानी के नीचे रखते थे और एक सेकंड के लिए उसको सांस लेने के लिए देते थे और फिर डुबा देते थे। तो माया का जो सुख आदि है वो इसी प्रकार से है। माया ज्यादा से ज्यादा समय हमें कष्ट देती है, लेकिन जो दुख है, विपदा है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो विपदा को ही हम क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। प्रभुपाद कहा करते थे, एक व्यक्ति था जिसको 24 घंटे में से 23 घंटे दूसरे व्यक्ति उसके सर में शूज से मार रहा था, चप्पल से जोर जोर से, एक के बाद ऐसा उसका सर में पिटाई करते जा रहा था, और उसको बस एक घंटे के लिए या कुछ मिनट के लिए छुट्टी दी। तो उसको क्या समझ रहा था? महान आनंद। फिर बाद में एक घंटे के बाद फिर से पिटाई शुरू हो गई। तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है कि ये जो थोड़ा सा दुख कम हो जाता है, और दुख ही है लेकिन कम हो गया, उसी को हम आनंद मान बैठते हैं। इसी को कहा गया है माया सुखाय, माया सुखाय भरत। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यही माया सुख है। तो माया बहुत आकर्षित करने वाली है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, कृष्ण आकर्षित करते हैं, तो क्यों नहीं उनकी माया आकर्षित करेगी। अभी ये जो नौजवान हीरो, जब वो गया उसको बचाने के लिए, तो ये बहुत तीव्रता से आया अपना घोड़े के पास आया, और फिर इसने अपना रस्सी उठाया और सब रस्सी डाल दिया इधर सब कुछ। अभी उसको मतलब कि पानी पीता हूं, तो मिनरल बॉटल पानी लेता है और पी लेता है। पी के जब ऐसा करता है तो कहने का तात्पर्य उन्होंने ये दिखाया, उसमें बहुत लर्निंग है ब्रह्मचारी के लिए। वो पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था कि उसको, यदि मैं उसको बचाऊंगा तो आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, वो सारा भूमि एक सेकंड के लिए घूमने लगता है उसके दिमाग में। उसको क्या दिखाई दिया? इसको बचाऊंगा तो इससे शादी करनी पड़ेगी, बच्चे होंगे, घर मेंटेन करो। तो ये दिखाया कि वो थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए उसने सोचा, तो उसमें वो मूवी आता है ना, छोटा सा फिल्मों में दिखाते हैं कि आप सोच रहे हो और उसी समय वो बैकग्राउंड दिखाते हैं। तो क्या दिखाया कि इसको मैं बचाऊंगा, तो देखा कि मैरिज हो जाएगा, फिर उसके पेट में एक बच्चा है, इसके पास एक बच्चा है, उसके पास एक बच्चा है, घर में इतना सारा सामान है। तो इतना सारा उसने कहा नहीं, इसने फिर से पानी को रखा, घोड़े में जंप लगाई और भाग गया। तो कहने का तात्पर्य है कि सारी चीजें बहुत अधिक आकृष्ट करने वाली है। तो माया सुखाय व्यक्ति केवल थोड़े से भौतिक सुख के लिए बहुत बड़ी विपदा अपने सर में लेकर घूमने के लिए तैयार है, लेकिन किस चीज के लिए? छोटा सा भौतिक सुख के लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने कहा मम माया दुरतया, जो भी साधक है उसने क्या कर दिया है? माया के साथ युद्ध छेड़ दिया है। और माया के साथ जिन्होंने युद्ध छेड़ा है उसको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे शत्रु कौन है और मेरे मित्र कौन है। जब तक उसको पता नहीं होगा तो वो बेचारा हर समय घायल ही रहेगा। साधना आदि करना उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे भक्तों की एक ही कमी है। क्या कमी है? माया से नहीं डरते। प्रभुपाद जब लंदन आखिरी विजिट था प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद लंदनेश्वर के सामने उनका दर्शन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो तमाल कृष्ण महाराज उनको यहाँ से ले गए थे मुंबई से, आखिरी विजिट था, बहुत अधिक वो बीमार हो गए थे। टीकेजे डायरी जो बुक है उसमें वर्णन आता है कि तमाल कृष्ण महाराज ने देखा प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं डिटीज के सामने और शांत है। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? वो थोड़ा फ्रेंडली थे प्रभुपाद से, बाकी सब थोड़े से डरते थे। लेकिन तमाम कृष्ण महाराज प्रभुपाद से बहुत आखिरी दिनों में बहुत क्लोज हो था, संबंध स्थापित हो गया था। वो प्रभुपाद हर समय फ्रेंडली पूछते रहते थे सब चीजें। उनके पास गए, प्रभुपाद अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा, मैं राधा लंडनेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं माया में ना गिरूं, माया से बचूं। तो प्रभुपाद ने कहा था, ये मेरे भक्तों की कमी है। इस प्रकार से प्रभुपाद तो प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि एक भी क्षण मेरे जीवन में ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण को भूला हूं। वैसे देखा जाए प्रभुपाद के पूरे जीवन को, बचपन से लेकर प्रचार का आंदोलन आदि, पूरे चाहे वो अपने गृहस्थ जीवन में थे या अपने बचपन में थे, हर समय वो कृष्ण के स्मरण आदि में थे, कृष्ण की सेवा में वो लगे हुए थे। तो उनके लिए माया का कोई प्रश्न नहीं बचता। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि माया के अगेंस्ट हमने युद्ध छेड़ा है तो हमारे पास अपने शस्त्र और अस्त्र होने चाहिए, जिसके द्वारा हम माया को डिफीट कर सकते हैं। तो भगवान ने तो कहा कि कैसे इसको पार कर सकते हो? माम च यो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सब गुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो तीन गुणों से बनी हुई माया है। तो भगवान ने कहा, माम च अव्यभिचारिणी, व्यभिचारी भक्ति नहीं, व्यभिचारी का मतलब है मिश्रित सकाम भक्ति। भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने आप को इस भौतिक जगत में बना रखू, तो भगवत भक्ति नहीं। अव्यभिचारिणी, एक तो व्यभिचारिणी स्त्री होती है जो पतिव्रता नहीं है, लॉयल नहीं है अपने पति के प्रति, दुर्चरित्र स्त्री है, वेश्या के समान उसका आचरण है, तो उसको व्यभिचारिणी कहा गया है। और अव्यभिचारिणी मतलब जो पतिव्रता नारी है, एक निष्ठा है अपने पति या स्वामी के प्रति। तो उसी प्रकार से हमारा जो भगवत भक्ति है, ये के है गुरु नंदन, नंद महाराज के जो पुत्र है कृष्ण, उनके प्रति एक निष्ठ भगवत भक्ति होनी चाहिए। तभी वास्तव में व्यक्ति माया के प्रभाव से बच सकता है, क्योंकि माया का कार्य, माया क्या करती है, हर समय ये जो भौतिक शक्ति है जो इतनी बलवती है, व्यक्ति को पकड़ना चाहती है, झापटिया धरे, और क्या करती है, दूर ले जाती है कृष्ण को। माया का मतलब क्या है? कृष्ण को भूलना। सरल अंडरस्टैंडिंग, प्रभुपाद कहते थे माया का मतलब जो भी चीज, वस्तु, स्थान, व्यक्ति हमें कृष्ण का स्मरण करने में बाधा डाल रहा है, तो वो चीज हमारे लिए माया है। माया का मतलब ये नहीं कि केवल स्त्री ही माया है, नहीं। कपिल देव ने देवती माता ने पूछा, तो इन्होंने ये बोला कि माया का फॉर्म यदि आपको देखना है, माया का रूप कैसे होता है, तो कपिल देव ने बोला स्त्री माया का ज्वलंत रूप है और जो पुरुष है वो स्त्री के लिए माया का रूप है। लेकिन माया का मतलब है जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि जो हमें कृष्ण का विस्मरण कराती है, कृष्ण के स्मरण आदि में बाधा डालती है, वो चीज हमारे लिए माया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें ये जानना चाहिए कि हमने माया के साथ युद्ध किया है तो हमारे पास क्या शस्त्र और अस्त्र है जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। पहला तो शस्त्र है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तीति। कृष्ण गीता में कहते सरल है, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरे चरणों पर जिसने एक निष्ठ आश्रय ग्रहण किया है, वो ये दुर्लंघ्य माया को पार कर सकता है, अन्यथा असंभव है। क्योंकि भगवान जिस प्रकार से शक्तिशाली है, उसी प्रकार से उनकी शक्ति भी सामर्थ्यवान है, बलवान है, शक्तिशाली है। तो इसलिए माया क्या करती है, सबसे पहले तो माया हमें भक्तों का संग छुड़ा देती है। सबसे पहला काम उसका है भक्तों में फूट डालना। क्या करना? फूट डालना। क्योंकि संग में शक्ति है, इसलिए हम बार बार जो देते संकीर्तन सन में आएंगे तो हम शक्ति अनुभव करते हैं। हम जैसे भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा एकाकी आमार नाही पाए बल, अकेले में कोई बल नहीं है, चाहे जितना मर्जी शक्तिशाली क्यों ना हो वो माया के द्वारा भ्रमित हो सकता है। ब्रह्मा जो सबसे पहले जीव है, सबसे विद्वान है, शक्तिशाली है, सृष्टि करता है, वो क्यों भ्रमित हो गए थे कृष्ण लीला से? हाँ, भगवान की वो जो बछड़े आदि को उन्होंने चुराया था, उसके 8 कारण आचार्य बताते हैं, ब्रह्मा का फॉल डाउन उसको कहते हैं। तो उसमें से पहला कारण यही था कि वो अकेले थे। पहला कारण क्या था? यही था कि वो अकेले थे बस। तो उसी प्रकार से माया का सबसे पहला कार्य है कि हमें अकेले अकेले कर देना, तो हमें क्या नहीं होगी? शक्ति नहीं होगी, निस्तेज हो जाएंगे हम। जिस प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे एक लकड़ी है तो उसको आप सरलता से तोड़ सकते हो, 8-10 लकड़ियां आएंगी तो आप तोड़ नहीं सकते। तो उसी प्रकार से जितने अधिक संख्या में भगवत भक्त संग में आते हैं और संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब संकीर्तन संग में आकर संकीर्तन करते हैं, संग में आकर सेवा करते हैं, भगवत भजन करते हैं, तो शक्ति बढ़ती है। इसलिए कपिल देव देहवती को कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सताम प्रसंगान, सताम प्रसंग, सताम मीन्स भक्त, प्रसंगान मीन्स ग्रुप, सारे मिलके। कपिल देव कहते हैं कि भक्त मिलकर यदि मम वीर्य संविदो, मम वीर्य मेरी जो शौर्य गाथा है, शौर्य गाथा भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप है उनका यदि श्रवण करता है, मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्करण रसायन कथा तज्जोषनादाशु अपवर्ग वर्तमनी भक्ति रति अनुक्रमशति, कि यदि भक्तों के संग में आकर कृष्ण कथा को एक निष्ठता के साथ श्रवण किया जाए, जो कृष्ण कथा कानों को भवन्ति हृत्करण रसायन कथा कानों को आनंद देने वाली है, तो ऐसे कार्य के द्वारा भक्ति रति अनुक्रमशति, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्ति और भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ने लगेगा, उसमें तीव्रता आ सकती है। हाँ, तो इसलिए माया का काम ही है कि आपको संग से दूर भेजना, अलग करना, या फिर हमारे मन में रहते क्या है, भक्तों के संग में नहीं जप करूंगा, भक्तों के संग में क्या, मैं अलग से सुनूंगा अपना MP3 प्लेयर से, भागवत क्लास में नहीं सुनूंगा, या फिर जप नहीं करूंगा, मैं अपने रूम में जप करूंगा। फिर रूम में आप जप करने जाते हैं कुछ और ही होता है फिर, है कि नहीं? एक तो ठंड के दिन भी है, कई सारी चीजें भी है जो हमें कृष्ण को भुला देती है। तो इस प्रकार से वास्तव में माया के प्रभाव से बचने का सरलतम उपाय है भक्तों के संग में अपने आप को रखना, तभी हम बच सकते हैं, अन्यथा इस दुर्लभ माया से बचना असंभव है। ऐसे बड़े बड़े अहंकार से भरे हुए व्यक्ति को माया ने अपने चरणों में झुकाया है, अहंकार विमूढ आत्मा करता हम मानते हैं, जो अहंकार वश वो सोचते हैं कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अभी बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, उन्नत हो गया हूँ, इतने साल से हो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, मेरे ये भी दीक्षा हो गई, फिर दूसरे भी हो गई, तीसरे की लाइन में हो तो नहीं चलेगा। माया ये नहीं देखेगी आपको, माया तो सब एक समान है, जो भी कृष्ण को बोला है। तो क्यों हमें भक्तों के संग में होना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर इस संसार को भोग करने की प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग है। ऐसे नहीं कि इजीली हट सकते हैं, ऐसे नहीं, बनी रहेगी जब तक हम परम पवित्र नहीं होंगे, भगवान के सेवा आदि के प्रति आसक्त नहीं होंगे, तब तक ये भोग करने की लालसा हृदय में बनी रहेगी, क्योंकि हमने कई करोड़ों जन्म तक उस संस्कार को अपने हृदय में डाल के रखा है। तो इसी कारण से भक्तों के संग बहुत आवश्यक है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, तो वैष्णव का आचरण यही है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रभुपाद उनका भजन गाया करते थे, सतसंग छाड़ी कहनो असते विलास। माया का मतलब क्या है? जो सत चीज सत नहीं है, शाश्वत चीजें नहीं है। सत क्या है? इस संसार में तीन चीजें सत है, शाश्वत है, यही जगत की नहीं है, भक्त भगवान और भगवत भक्ति। ये तीन चीजें ये जगत की नहीं है, ये तीन चीजें शाश्वत है। चैतन्य महाप्रभु ने भी विष्णु प्रिया को यही कहा था। तो सतसंग छाड़ी कहनो असत्य विलास जे कारणे लागी आमा कर्म बंध पाश। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्यों मुझे कर्म बंध में अटक गया हूं, क्यों मुझे कर्म की श्रृंखलाओं ने बांध दिया है? क्योंकि मैंने क्या किया है? आसक्त चीजों में विलास। एक तो है विलास मुझे दिवोवास, विलास में जहां जॉयफुल पास्टाइम वाला स्थान है वो विलास वृंदावन है, और मैं असत गुस्से में आनंद लेता हूँ, असत चीजों में वस्तुओं में स्थानों में आनंद लेना चाहता हूँ, असत चीजों में रममान होता हूँ, उनका उपभोग करना चाहता हूँ, तो जिसके फल स्वरूप मुझे कर्म की श्रृंखलाएं बांध रही है। इसी कारण से व्यक्ति को भक्तों का जो संग है उसमें हमेशा बने रहना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमारे पास माया के अगेंस्ट जो आसरा है वो एक ही है, और वो क्या है? प्रार्थना, प्रेयर्स। इससे परे हमारे पास कोई आसरा नहीं है माया के अगेंस्ट हम लड़ने के लिए, प्रेयर्स। हाँ, तो प्रार्थना करना ये भक्त का या भगवत भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम जितना मर्जी अपने शक्ति सामर्थ्य को प्रस्तुत करें, विद्वत्ता बल आदि को प्रस्तुत करें, लेकिन वो माया के सामने क्या है? जीरो है। लेकिन एक चीज है, सिंसियरली भक्त भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं गजेंद्र हाथी, गजेंद्र हाथी गज इंद्र, गज मीन्स हाथी, इंद्र मीन्स राजा, हाथियों में जो राजा था उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसा गजेंद्र हाथी उस वन का सबसे शक्तिशाली हाथी था, इवन सिंह बाघ बाघ शेर आदि उसको देखते ही भाग जाते थे, इतना बलशाली था वो। जब आवाज भी करता था अपना सोन उठा के, तो कई दूर मील तक शेर आदि भागते थे, इतना प्रभावशाली हाथी। जब अपने पूरे ताम धाम पारिवारिक सदस्य अपनी प्रजा सबके साथ आ रहा था, कहा स्नानम, स्नान करने के लिए सरोवर में स्नान, जल क्रीड़ा करने, तो गया स्नान कर रहा है अपने सारे मित्र पत्नी बच्चे आदि सबके साथ, कभी इसके ऊपर पानी डाल रहा है, कभी उसके ऊपर डाल रहा है, सब इसके ऊपर डाल रहे हैं। इसी समय किसने पकड़ा उनको? माया ने। किसको पकड़ा? जो ग्रह है, ग्रह मीन्स क्या, मगरमच्छ, मगरमच्छ ने पकड़ा। तो मगरमच्छ की तुलना माया से की गई है, तो मगरमच्छ ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के कारण उसके पांव को पकड़ा, और इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, जो गजेंद्र है, और चिल्ला भी रहा था, कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई कर सकता है? अभी हमने ठान लिया माया में जाना है, तो कोई हमारी सहायता कर सकता है? थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। तो जब इनको पकड़ा, मगर बच्चे ने उसका पाव पकड़ा, तो ये गजेंद्र चिल्ला रहा है, बच्चे पत्नी मित्र सब कुछ निष्फल हो रहा है, कोई बचा नहीं पा रहा है। शास्त्र कहते हैं कि एक साल तक वो जलचर, जो मगरमच्छ है, जल में उसके पास बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अंदर खींच रहा था, और ये जो गजेंद्र है वो बाहर खींच रहा था। एक साल तक ये युद्ध चल रहा है। नेचुरली पानी में जब मगरमच्छ है तो उसके पास बहुत बल है, इतना बल होने के बावजूद भी मुश्किल है गजेंद्र को बाहर निकलना। तो पूर्व सुकृति के कारण, पूर्व संचित जो सुकृति थी इस गजेंद्र की, राजा इंद्रद्युम्न थे वो अपने पूर्व जन्म में, और पूर्व जन्म में उन्होंने कृष्ण के बहुत गुणगान किया था प्रेयस आदि, और उसी समय हाँ भगवान याद दिलाए उनको, याद आया उनको, उन्होंने देखा कि संसार में मेरे पास सब सामर्थ्य हो है, सौंदर्य आदि है, बल है, मेरे पास मेरे पुत्र परिवार मित्र आदि सब है, लेकिन ये सब लोग मेरी रक्षा करने में असमर्थ है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं आत्म असत सैनिशु, ये सारे असत सैन्य है, ये सैनिक जिनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं कि ये मेरी रक्षा करेंगे मेरे बुढ़ापे आदि में, लोग यही पूछते हैं क्यों पुत्र परे पुत्र आदि क्यों, व्यक्ति यही सोचता है कि बुढ़ापे में मेरी रक्षा होगी, मेरा ख्याल करेंगे, मेरा ध्यान करेंगे, ये भावना से। लेकिन गजेंद्र को कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया, उन्होंने देखा कि संसार में शेल्टर या आश्रय लेने योग्य कोई भी नहीं है, ये सब काम नहीं आने वाले हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास मोबाइल में 500 लोगों के कॉन्टेक्ट होंगे, मेरी इतनी पहचान होगी, ये चीजें होगी, तो ये मेरी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मृत्यु के समय में ये चीज रक्षा नहीं कर सकते। मृत्यु के समय में दो ही चीजें आपकी सहायता कर सकते हैं, एक है भगवान के भक्त और दूसरा है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गजेंद्र ने देखा कि अभी मेरी रक्षा है तो कोई भी नहीं है, तो उन्होंने तुरंत बोला नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे नारायण अखिल जगत के गुरु, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाँ, ये कहते हुए उन्होंने उनके सामने जो कमल फूल था है उसको अपने सूंड में उठाया और ऊपर फेंका। भगवान इस ऑफरिंग को भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम और भक्ति से अर्पित करता है तो मैं अपना द्वारका के रानियों का भोजन आदि छोड़कर उस भक्त के उस भेंट को स्वीकार करने के लिए दौड़ता हूं। तो भगवान इतना तीव्रता से दौड़कर आते हैं, भागवतम में वर्णन आता है कि कृष्ण ने सोचा कि मैं गरुड़ के ऊपर बैठ के जाऊंगा तो ये गरुड़ स्लो जा सकता है, इसलिए कृष्ण गरुड़ से पहले दौड़े और बाद में गरुड़ जी पहुंचे, क्योंकि इतना तीव्रता आर्तनाद कहते ना, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो बहुत तीव्रता से प्रार्थना करते, रोते हैं, चिल्लाते हैं, या कुछ नहीं है तो जो भीख मांगते बिल्कुल रोते हुए, अपने आप को नीच बेगर समझते हुए, तो व्यक्ति दे देते हैं, करुणा को जागृत करते, किसी के हृदय में करुणा रस को हम जागृत करते, तो बेचारा नहीं भी है जहां मर्जी हाथ डाल के दे ही देते हैं कुछ, तो उसी प्रकार से भगवान भी है। उनकी ये आर्तनाद भरे तीव्र जो पुकार थी कृष्ण के लिए वो कृष्ण ने सुनी, तो कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने सोचा मेरा ये गाड़ी तेजी से नहीं चलेगा, मैं खुद दौड़ने लगे और पहल पहुंचे भगवान। पहुंचते ही क्या हुआ, उन्होंने वो जो ग्राह है मगरमच्छ है अपने चक्र के द्वारा उसके उसका विनाश करते हैं और उसको मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि माया हर समय हमें खींचती जा रही है, है ना, हर रोज कितने माया का मतलब हजारों भौतिक भोग आदि के जो विचार है, माया का मतलब केवल एक स्त्री के लिए पुरुष नहीं है या पुरुष के लिए स्त्री नहीं है, बल्कि इस संसार में बने रहने के लिए जो भौतिक इच्छाएं हैं, चाहे हमारे नाम फेम आदि के लिए है या हमारे वर्चस्व को स्थापित करने के लिए है, वो सारी जो इच्छाएं हैं वो माया के विचार ही है। तो इसलिए माया हर क्षण हर समय हमें वो खींच रही है भौतिक संसार में, जिस प्रकार से मगरमच्छ गजेंद्र को खींच रहा था। लेकिन यदि हमारे पास ये प्रार्थना रूपी आश्रय है तो हम वास्तव में बच सकते हैं, कृष्ण की सहायता मिलेगी, कृष्ण भक्तों की सहायता मिलेगी, जिसके द्वारा ये बलशाली जो माया है उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से गजेंद्र ने प्रार्थना की थी उसी प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे कि जो भगवान का पवित्र नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना है। प्रभुपाद को पूछा कि क्या है, प्रभुपाद ने कहा बेस्ट प्रेयर, ये सबसे बेस्ट प्रेयर है, सबसे बेस्ट प्रार्थना है, जिसको हम यदि गंभीरता से सिंसियरली भगवान के चरणों में ऑफर करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो कृष्ण दौड़ कर आते हैं। इसलिए कृष्ण ने नारद को कहा, नारद ने पूछा भगवान आपका एड्रेस दे दो मुझे, मैं आजकल बहुत भक्तों के वो आ रहे हैं, क्या कुरियर आ रहे हैं, आपको भेजूंगा। भगवान कहते मैं कहां निवास करता हो, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां जहां मेरे भक्त इस प्रार्थना के द्वारा मुझे पुकारते हैं वहां वहां मैं निवास करता हूं। तो ये सरल उपाय है, हमें ये जो बलशाली दुर्लभ या बहुत सामर्थ्यवान शक्तिशाली ये जो माया है ये उससे बचना है तो सरल उपाय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उसके लिए व्यक्ति को विनम्रता का जो भावना है उसको धारण करना पड़ेगा। एकाकी अमार नाही पाय बल, अकेले में मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो इन भक्तों के संग पर ही निर्भर है मेरा आध्यात्मिक जीवन, ये भक्त लोग नहीं होंगे तो हे कृष्ण आपकी सेवा करना भी मेरे लिए दुष्कर है, आपका नाम लेना तो बहुत ही दुष्कर है। इस भावना को हम रखेंगे और भक्तों की महिमा को अपने हृदय में अपने दृष्टि में उस महिमा को बढ़कर देखेंगे, हाँ तो वास्तव में हम माया का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो सकते हैं। और माया का मतलब ये है कृष्ण की सेवा को भूल जाना, और कृष्ण की सेवा क्या है, भगवान नाम का उच्चारण। सेवन मुखे ही जीवा दो, सबसे पहले सेवा रूप को स्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एव स्फुरति, सबसे पहले सेवा जीवा से है, रूप गोस्वामी ने कहा। तो भगवान सेवा को भूलना, भगवान के नाम आदि को भूलना, हाँ वो वास्तव में माया है। आपने वो फेमस स्टोरी सुनी होगी, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। हाँ एक बार भगवान महाराष्ट्र से निकल रहे थे नारद के साथ, गुजरात तक आ गए और वहां आए तो नारद ने कहा कि हे कृष्ण आपके इतना मैं प्रचार करता हूँ, इतना भक्त बनाता हूँ, और माया माया भी माया एग्जैक्टली क्या है ना, अभी तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, जरा प्रैक्टिकल दिखाओ, क्या करो कुछ दिखाओ प्रैक्टिकल करके बताओ, जरा एक्सप्लेन करो माया क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भगवान जब रेगिस्तान से आए रहे थे ब्रज की ओर, तो उन्होंने कहा नारद बहुत समय हो गया, सूर्य तपा हुआ है और मुझे ना बहुत प्यास लगी है, प्लीज मेरे लिए क्या करो, एक गिलास पानी लेकर आओ प्लीज। नारद ने कहा वाह अच्छा, एक गिलास पानी कोई बड़ी सेवा थोड़ी है आपके भगवान, ठीक है मैं आपके लिए एक गिलास पानी लेके आता हूँ। भगवान ने कहा गिलास ले जाओ। गए नारद दौड़ते हुए, अभी रेगिस्तान है, उनको दूर से एक गाँव नजर आया, बहुत सुंदर छोटा सा गाँव था, हरा भरा गाँव और रेगिस्तान के बीच में, पहली चीज तो देखते नारद तो बहुत खुश हो गए कि अभी मुझे सेवा करने का मौका मिला है, भगवत सेवा पानी पिलाना है भगवान को। हर सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है, हर सेवा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की सेवा चाहे कोई भी हो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो कृष्ण से संबंध रखती है। तो नारद जब गए पानी लाने के लिए, उन्होंने देखा गांव में तो ये एक मुखिया जो गांव का सरपंच, कल परसों जा रहा था कहा तो कार के ऊपर लिखा था सरपंच, तो मैं सोच रहा था इस शब्द का अर्थ क्या है, तो मुझे याद आया कि गांव में पांच प्रमुख लोग होते हैं और उनमें जो हेड होता है सर मींस हेड, पंच मींस पांचों का, उसको सरपंच, ऐसे मैंने स्पेकुलेट किया ये हो सकता है, ऐसे मुझे लगा। तो उसी प्रकार से वहां का जो मुखिया है सरपंच था गांव का प्रमुख व्यक्ति, उनके घर में गया तो नारद टक टक कर रहे हैं हरि बोल, अभी भक्त तो हरि बोल ही बोलेंगे, वो थोड़ी कुछ और बोलेंगे, नारद हरि बोल कौन है। तो दरवाजा खोला नहीं, खोला एक युवती आई जिसने दरवाजा खोला,
आइए आइए नारद जी आइए।
तो नारद जी आए बैठे तो वो कहती कि हाँ आप बताइए क्या क्या सेवा आपके लिए करो। तो बस मैं आया हूँ एक ग्लास पानी लेने के लिए। तो वो बैठते ही कि नहीं तो उनका पिताजी आ गया। ओ नारद हमारे तो अहो भाग्य, आपके चरण का स्पर्श हमारे घर में हो गया क्योंकि दर्शन पवित्र कलर तुम्हारा गुण, आपका दर्शन करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर नारद आए बैठे 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 और बताइए एक ग्लास पानी के लिए आया था। कहते हाँ बल्कि मैंने ये सुना था कि आप आने वाले थे हमारे घर में। तो ऐसी बातें करते करते नारद भूल ही गए किसके लिए आया था, पानी के लिए। और उन्होंने कहा कि आप आने वाले थे और मेरे पुत्री से आपका विवाह होने वाला था। तो नारद अपना जो मेन गोल है उसको भूल गए और उनकी बात को करते करते नारद उनके घर जमाई बन गए। क्या बन गए? घर में रहने लगे, उनका शादी हो गया, नारद के तीन चार बच्चे हो गए। अभी वो जो मुखिया था सरपंच था वो शरीर त्यागा, नारद अभी क्या बन गए? मुखिया सरपंच। और अभी बिल्कुल चल रहा था तो उसी समय बहुत तूफान और बारिश आदि आ गई, तो पूरा बारिश बारिश पानी पानी हो रहा था सब जगह, तहस नहस हो गए, घर वगैरह डूबने लगे। नारद के बच्चे डूब रहे थे, पत्नी डूब रही थी, घर का सामान बहके जा रहा था, पानी का ग्लास भी बहके जा रहा था। फिर जब ये सब हो रहा था तो नारद पानी के बीच में डूब गए, डूबते डूबते उनके हाथ में कुछ आ गया, ऐसे हाथ में कुछ आ गया, ऐसे ऐसे करते जा रहे और आके ऊपर की देखा कौन है, कृष्ण। और कहां कहां पहुंचे ये, जहां कृष्ण ने छोड़ा था उनको। नारद भगवान ने पूछा नारद पानी का ग्लास कहाँ है? नारद ओ पानी का ग्लास। तो फिर नहीं भगवान अभी वापस ले गया था। फिर नारद गए गए तो सेम विलेज वैसा ही गांव सब चीजें वहां वही घर वहां गए, लेकिन अभी क्या था डिटर्मिनेशन, दरवाजा खटखटा रहे अभी भगवान। फिर से माता जी आ गए, क्या चाहिए प्रभु जी? पानी का ग्लास किसके लिए? अभी पूरा बोल रहे थे मुझे पानी का ग्लास चाहिए भगवान कृष्ण के लिए, बस अभी वो फिक्स थे, दृढ़ थे। और बाकी और बातें उनमें वो मग्न नहीं हो रहे थे। फिर उनके पिताजी भी आ गए पानी का ग्लास। तो नारद ने पानी का ग्लास लिया भर के कृष्ण को ला के दिया। तो भगवान ने उसी से मैं कहा था समझ में आ गया मेरी जो माया है, हाँ मम माया दुरतिया, माया का मतलब है भगवान को भूलना, उनकी सेवा को भूलना। हाँ तो डिटर्मिनेशन, अपना जो लक्ष्य है जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। और वो भक्तों के संग में हो सकता है, अकेले नहीं। हाँ शास्त्रों को अध्ययन करना, भक्तों के द्वारा चर्चा करना, सुनना, इसलिए शास्त्र कहते हैं कथयन्तस्य मां नित्यं बोधयन्तः परस्परम परस्परम। आओ भक्तों के संग में चर्चा करो, हाँ अपने अनुभवों का आदान प्रदान करो। इससे क्या होगा कि फिर हम माया के जो विचार है उसका प्रभाव है उससे अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए ये सरल उपाय है जो भगवान ने बताया। हाँ पहला है भक्तों के संग में हमेशा बने रहना, और दूसरा है भगवत प्रार्थना को अपने जीवन में लाना। हाँ माया के आगे सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो प्रार्थना, और बेस्ट प्रार्थना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रंध्रश्रीमद्भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय।